सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सवसाहूणं सिद्धे विहुदसयले अज्जत्थबहित्थबन्धनं मुक्के भत्तिये अहं नमिं पुनो पुनो बंधनम वोच्छम। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित धवला टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबलि आचार्य, जिन्होंने श्री धरसेन आचार्य के उपदेश के अनुसार इसकी रचना की है, जो उपदेश हमें मूल में भगवान महावीर के द्वारा प्राप्त हुआ है। 14वीं पुस्तक जो पंचम वर्गणाखंड, उसमें हम बंधन अनुयोग द्वार देख रहे हैं, पृष्ठ संख्या 37। प्रयोग बंध की बात अभी चल रही। कल हमने विसरसा बंध देखा। प्रयोग बंध में दो प्रकार देखे थे, एक कर्म बंध और नो कर्म बंध। कर्म बंध की बात बाद में करेंगे, पहले नो कर्म बंध की बात कह रहे हैं। तो कल हमने 40 नंबर के सूत्र में पढ़ा था कि जो नव कर्म बंध है वह पांच प्रकार का है, आलापन बंध, अल्लीवन बंध, संश्लेष बंध, शरीर बंध और शरीरी बंध। अब उसका जो स्पष्टीकरण है उसको पढ़ेंगे। इस प्रकार नव कर्म बंध पांच प्रकार का ही होता है, क्योंकि इनके सिवा अन्य बंध उपलब्ध नहीं होता। उनमें से आलापन बंध का क्या स्वरूप है ऐसा पूछने पर कहते हैं रस्सी वरत्रा, यानी रस्सी विशेष यानी विशिष्ट रस्सी और काष्ठ द्रव्य आदि से जो पृथकभूत द्रव्य बांधे जाते हैं वह आलापन बंध है। देखो, हम रस्सी से लकड़ियां बांधते इकट्ठे तो वह आलापन बंध हुआ, या वरत्रा यानी कोई जो बड़ा रस्सा होगा या जो कोई विशिष्ट रस्सी होगी। तो रस्सी से हमने मान लेते ये पेपर पड़े हैं यहाँ, हमने रस्सी से बांध ली, वो आलापन बंध कहलाएगा। ये रस्सी वरत्रा काष्ठ द्रव्य सब उसमें आ गए। लेप विशेष से परस्पर संबंध को प्राप्त हुए द्रव्यों का जो बंध होता है वह अल्लीवन बंध कहलाता है। रस्सी वरत्रा और काष्ठ आदि के बिना तथा अल्लीवन विशेष के बिना जो चिक्कन और अचिक्कन द्रव्यों का अथवा चिक्कन द्रव्यों का परस्पर बंध होता है वह संश्लेष बंध कहलाता है। लेप में तो विशिष्ट लेप के द्वारा जो बंध होता है, और अभी जो हमने संश्लेष में चिक्कन और अचिक्कन या अकेले चिक्कन का चिक्कन के साथ वो संश्लेष बंध। पांच, शरीरों का जो परस्पर बंध होता है वह शरीर बंध होता है, तथा जीव प्रदेशों के साथ और पांच शरीरों के साथ जो बंध होता है वह शरीरी बंध कहलाता है। अब आलापन बंध के स्वरूप का कथन करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं, अभी इसी को विस्तार से समझाएंगे। जोसो आलावण बंधो नाम तस्स इमो निर्देशो, जे सगड़ानम वा जानानम वा जुगानम वा गड्डीनम, गड्डीनम चाहिए ना, पीछे देख लेना सूत्र नंबर 41। गड्डी नम चाहिए, इन के ऊपर बिंदी लगाना दूसरी लाइन में, वा गिल्लीनं वा रहाणं वा संदनाणं वा सिवियाणं वा गिहाणं वा पासादाणं वा गोवुराणं वा तोरणाणं वा सेकट्टेन वा लोहेन वा रज्जुना वा वभेन वा दभेन वा जे चामण्ये एवं आदिया अन्नदव्वाणम अन्नदव्ये ही आलावियाणम बंधो होदी सो सवो आलावण बंधो नामा। हिंदी में देखते हैं, जो आलापन बंध है उसका यह निर्देश है, जो शक्तों का यानों का युगों का गड्डियों का गिल्लियों का रथों का स्यंदनों का शिविकाओं का गृहों का प्रासादों का गोपुरों का और तोरणों का काष्ठ से लोह से रस्सी से चमड़े की रस्सी से और दर्भ से जो बंद होता है। अभी ग्रहों में भी क्या है, वो लकड़ी है, अभी उसमें ईंटें हैं, चूना है, जो कुछ है उससे बंद हुआ, ऐसा कहते हैं। तथा इनसे लेकर अन्य द्रव्यों से आलापित अन्य द्रव्यों का जो बंध होता है वह सब आलापन बंध है। अब इस सूत्र का अर्थ कहते हैं, इसको और समझाएंगे। यथा जिनकी धुर गाड़ी की नाभि, गाड़ी की दिख है ना, और महाचक्र लोह से बंधे हुए हैं, जिनके ये क्या है छुहे, नीचे क्या लिखा है, तुम्ब महाचक्का लोह बद्ध छुहय पेरंता लोहा दीन लोणा दीनम। अच्छा, जिनके छुहय पर्यंत लोह से बंधे हुए हैं, बंधे हुए हुआ है, बंधे हुए हैं, और जो नमक आदि भारी भार को ढोने में समर्थ है वे शकट कहलाते हैं। अच्छा, ये शकट किसको कहना, ये कहते हैं शकट मालूम है किसको कहते हैं, हाँ बैलगाड़ी हाँ शकट न, शकट का स्वान वो तो कहते हैं ना, शकट यानी वो तो बैलगाड़ी होती है, तो इसके लिए वो तो धुरा यानी वो एक्सल जो है दो चक्के के बीच में किधर, कहाँ गाड़ी और गाड़ा लिखा, हाँ हाँ जिनकी धुर गाड़ी की नाभि और महाचक्र लोह से बंधे हुए हैं, ये जो चक्के हैं और वो बीच में एक्सेल है और वो सब वो चक्के लोहे से बंधे हुए हैं, जिनके छुए पर्यंत लोह से बंधे हुए और जो नमक आदि भारी भार को ढोने में समर्थ है, यानी वो तो सामान इधर से उधर ले जाने में उसका यूज होता है। नाना प्रकार के भांडों से आपूरित होकर भी समुद्र में गमन करने में समर्थ जो जहाज होते हैं वे यान कहलाते हैं। समुद्र में जो है ना बड़े बड़े जहाज वो यान कहलाते हैं, ये बैलगाड़ी हुई यान हुए, जो बहुत भारी होने से और बहुत बड़े होने से घोड़ा और खच्चर आदि के द्वारा ढोया जाता है वह युग कहलाता है। अच्छा, जिनके दो चक्के छोटे हैं और जो धान्य आदि हल्के भार के ढोने में समर्थ है वे गड्डी कहलाती हैं। इसलिए ऊपर महाचक्र लिखा था और अब यहाँ छोटे चक्के लिए। फिरिक्की को गिल्ली कहते हैं। शंका, फिरिक्की किसे कहते हैं? जिसकी नेमी और तुंब की आधारभूत आठ लकड़ियां वर्तुलाकार चुंद से घटित है उसे फिरिक्की कहते हैं। उसके भी अर्थ होते हैं। जो युद्ध में अधिरथी अथिरथी चाहिए ना, अतिरथी अधिरथी अहिरय अहिरह महारह। हम मराठी में रथी महारथी अथिरथी अतिरथी है ना, अधिरथी कहा उन्होंने। और महारथियों के चढ़ने योग्य होते हैं वे रथ कहलाते हैं। जो चक्रवर्ती और बलदेवों के चढ़ने योग्य होते हैं, अच्छा उनके लिए भी स्पेशल होता है, जो सब आयुधों से परिपूर्ण होते हैं और जो पवन के समान वेग वाले होते हैं और धूर के टूट जाने पर भी जिनके चक्रों की इस प्रकार की रचना होती है कि जिस गुण के कारण जिनके गमनागमन में बाधा नहीं पड़ती वे स्यंदन कहलाते हैं। ये आज नवी इन्फॉर्मेशन मिली सब, यानी वो बीच वाली झूरा टूट जाए तो भी चाक ऐसा अलग नहीं होगा, चक्रों की रचना ही इस प्रकार की। जो मनुष्यों द्वारा उठाकर ले जाई जाती है वे शिविका कहलाती है, पालकी जिसको कहते हम। जिनकी भीत लकड़ियों से बनाई जाती है और जिनका छप्पर बांस और तृण से छाया जाता है वे गृह कहलाते हैं। ईंटों और पत्थरों के बने हुए पत्थर बहुल आवासों को प्रासाद कहते हैं। अच्छा इन्हें हमारे प्रासाद हो गए हाँ। कोटों के दरवाजों पर जो घर बने होते हैं वे गोपुर कहलाते हैं। अच्छा प्रत्येक पुर और प्रासादों पर वंदनमाला बांधने के लिए आगे जो वृक्ष विशेष रखे जाते हैं वे तोरण कहलाते हैं। इन पूर्वोक्त शकट आदि के जो बंद होते हैं वे आलापन बंद कहलाते हैं। अपना विषय क्या चल रहा है अभी, जो रथ यानी वो जो जोड़कर इकट्ठा स्ट्रक्चर उसका तैयार किया जाता है हाँ, ये सारे आलापन बंद है। शंका, इनका बंधन किस पदार्थ से होता है? ये जो एक बंध कर ये जो बातें बनी है, गड्डी है या जो कुछ रथ है यान है युग है शकट है, तो किस पदार्थ से उनका बंधन होता है? समाधान, काष्ठ से, लोह से, रस्सी से, वर्ध्र से, दर्भ से होता है। यहाँ सूत्र में आए हुए वा शब्द से, वकले से, शुंभ अर्थात तृण विशेष से और लकड़ी से होता है इत्यादि लेना चाहिए। काष्ठ आदि अन्य द्रव्यों से जो आलापित अर्थात परस्पर संबंध को प्राप्त हुए अन्य द्रव्यों का बंध होता है वह सब आलापन बंध है। अब आगे दूसरा बंध अल्लीवन बंध को समझाएंगे। क्या कहते अल्लीवन, हाँ पेज नंबर 30 से सूत्र में अल्लीवन न न सादा लिया था, यहाँ प्राकृत में तो न ही होता है, आगे स्पष्टीकरण में क्या होगा? फिर आया क्या फिर अल्लीवन अल्लीवन न ही क्या है, शंका में न पूछा है उन्हें, आप क्या कहते न ही लिखा है अल्लीवन बंद ही है, सूत्र में न कर देना फिर अल्लीवन बंद। अभी हम पढ़ेंगे इसको, जो सो अल्लीवन बंधो नाम तस्से इमो निर्देशो से कड़याणम वा कुड्डाणम वा गोवर पीड़ाणम, पीड़ाण है ना वो का पिंडाणम, पीछे देख देख के चलना पड़ेगा हमें, नंबर क्या है उसका 42, गोवर पीड़ाणम ही है, पीड़ाणम पीड हाँ गोवर पीडानम वा पागारणम वा साड़ियाणम वा जे चामण्ये एवं आदिया अन्नदव्वाणम अन्नदव्ये ही अल्लीविदानम बंधो होदी सो सवो अल्लीवण बंधो नाम। जो अल्लीवण बंध है उसका यह निर्देश है। कटकों का, कुड्डों का, गोबर पीड़ों का, प्राकारों का और शाटिकाओं का तथा इनसे लेकर और जो दूसरे पदार्थ है उनका जो बंध होता है अर्थात अन्य द्रव्यों से संबंध को प्राप्त हुए अन्य द्रव्यों का जो बंध होता है वह सब अल्लीवण बंध है। ये संबंध को प्राप्त हुए और पहले क्या लिखा था, अन्य द्रव्यों से जो आलापित है और यहाँ संबंधित है। अब समझाएंगे इसको। 42 हो गए ना, 40 पृष्ठ पर आते हैं। बांस की कमचियों के द्वारा परस्पर बुनकर घर और अवन आदि के ढांकने के लिए जो बनाई जाती है घरावणादि वे कटक अर्थात चटाई कहलाती है। ये पहले से वो तो तख्ते आते थे ना, इसे बुरुड़ वर्क जिसको बुरुड़ काम जिसको कहते हैं। चटाई तो ये छोटी हुई, बहुत बड़ा ऐसे बड़े बड़े भी होते हैं ना, कटक अर्थात चटाई कहलाती। जिन गृह घर और अवन की जो भीते बनाई जाती है उन्हें कुड्ड कहते हैं। कुड्ड लिखा है। कुड्डों का जो पुद्गल बंध होता है वह अल्लीवण बंध कहलाता है। क्योंकि वर्ध्र दर्भ लोह काष्ठ और रस्सी के बंध के बिना परस्पर मिलाने मात्र से ही यह बंध उपलब्ध होता है। ये तो चटाई कैसे, वो तो बस अलग अलग ही है ना, इस तरह से वो गूंथे गए हैं बस, तो ये परस्पर बंध हुआ, वो अल्लीवण हुआ। यह बंध संश्लेष बंध में अंतर्भूत होता है यह कहना ठीक नहीं है, यानी इसको संश्लेष बंध नहीं कहेंगे हम, क्योंकि गीली मिट्टी में चिक्कन गुण का अभाव है। गोबर से लेप कर जो पीड़ बनाए जाते हैं वे गोबर पीड़ कहलाते हैं। इनका जो बंध होता है वह भी अल्लीवण बंध है, क्योंकि इनके बंध में अपने से भिन्न दर्भादि बंध के कारण नहीं उपलब्ध होते, यानी गोबर से ही वो बनाए जाते हैं, इसलिए भी अन्य द्रव्य उस वहाँ जरूरत नहीं है। जिन गृह आदि की रक्षा के लिए पार्श्व में जो भीते बनाई जाती है वे प्राकार कहलाते हैं अथवा पकी हुई ईंटों से जो वरंडा बनाए जाते हैं वे प्राकार कहलाते हैं। यहाँ पर भी ईंटों से पृथकभूत बंध के कारण नहीं पाए जाते हैं, यानी ईंटें ही रखकर एक दूसरे पर, खाली ईंटें ही रख या पत्थर ही पत्थर रखकर, उसको बीच में सीमेंट वगैरह नहीं डालना, उसको यहाँ कहा है। हाँ अभी वो फुटपाथ बने, वो बीच में खुश है। शंका। पहले पकी हुई ईंटों से बने हुए प्रासाद और गोपुर आदि का आलापन बंद होता है ऐसा कहा है, अब यहाँ उनका ही अल्लीवण बंद कह रहे हो, सो यह कथन विरोध को कैसे नहीं प्राप्त होता है? समाधान, नहीं, क्योंकि पहले प्रासाद गोपुर आदि का लोहे से तथा लोह और काष्ठ की कीलों से बंद देखकर उनका आलापन बंद कहा है। वहाँ कीले ठोकते हैं ना, तो लकड़ी को लकड़ी जोड़ते हैं, या जो घरों में लोहे के कीले काष्ठ के कीले उससे वो बंध देखने में आता है, परंतु उनकी भीतों का तो अल्लीवण बंध ही होता है, इसलिए उक्त कथन में कोई विरोध नहीं है। स्त्रियों के वो स्त्री नहीं है, स्त्री चाहिए। स्त्रियों के द्वारा देश विशेष में जो पहनी जाती है वे शाटिका कहलाती हैं। ऊपर क्या लिखा, बहुलिया ही पर्यत्त विषये परिहिज्यमाणावो, साड़ी आओ। अच्छा, साड़ी साड़िया उसको शाटिका कहा, शाटिका कहलाती है। तथा इनका जो तंतु संतान बंध होता है वो अल्लीवण बंध है, क्योंकि इनमें तंतुओं के सिवा अलग से बंध के कारण नहीं उपलब्ध होते। कोई भी वस्त्र हो, चादर है या साड़ी है, तो उसमें तंतु ही तंतु आपस में गूंथे हुए, ये गूंथ कर जो बनाए जाते हैं, उसमें दूसरा कुछ चिकना कोई पदार्थ नहीं है, तो उसको ये अल्लीवण, ना क्या नाम देखा हमने, अल्लीवण बंध। अन्ने एवं आदिया, इस वचन से नेत्रपट्ट और कपास के सूत से बुने हुए वस्त्रों का ग्रहण करना चाहिए, शेष कथन सुगम है। जिसको हम ये बुनना और जो गूंथना आदि कहते हैं, अभी स्वेटर का वो जो लो स्वेटर बनाया लोकर का, तो वो भी इसमें आ जाएगा। यानी वही मटेरियल एक आपस में गूंथ कर बनाया हुआ जाता है, इसको चटाई है, वस्त्र है, ये सब। जो सो संसिलेस बंधो नाम तस्य इमो निर्देशो, जहाँ कठ जदूणम अन्नोन्न संसिले सिदानम बंधो संभवदि, सो सवो संसिलेस बंधो नाम। जो संश्लेष बंध है उसका यह निर्देश है। जैसे परस्पर संश्लेष को प्राप्त हुए काष्ठ और लाख का बंध होता है, वह सब संश्लेष बंध है। जतु लाख को कहते हैं। लाख और काष्ठ के परस्पर संश्लेष से जो बंध होता है वह संश्लेष बंध है। यह बंध अल्लीवण बंध में अंतर्भूत नहीं होता, क्योंकि यहाँ पानी से संयोग को प्राप्त हुए द्रव्य का अभाव है। पानी से पानी है ना, ऊपर क्या लिया, पानी है ना हाथों से, पानी से क्या उसका भाषांतर ऐसा क्यों कहा, पानी हाथ को कहते हैं, पानी रिस्व रस्व है ना, ऊपर पानी है ना, जनिदद वा भावादो अल्लीवण बंदे पविसदि पानी है ना जनिद, पानी है ना जनिद जनिद जनिदद व अभावादो। यानी हाथों से उसको बनाया ना, बुनना क्या करते हैं, हमने हाथों से उसमें एक दूसरे को डालकर बनाया है, ये पानी से नहीं चाहिए, यानी हाथ से। हाथों से करो, हाथ के नहीं, हाथों से संयोग को प्राप्त हुए द्रव्य का अभाव है। ये द्रव्य जो संयोग को, जो ये वस्त्र बुना है हाथों के द्वारा, उसको बुना है ना, या चटाई बनाई है, तो किसी ने हाथों से उसको बनाया है वैसा, क्योंकि ऊपर अल्लीवण में पानी का कोई काम ही नहीं ना, जैसे चटाई है, जो अन्य अन्य बातें हैं उसमें पानी की कोई बात नहीं। आलापन बंध में भी अंतर्भूत नहीं होता, क्योंकि इनसे पृथकभूत द्रव्यादि बंध के कारण नहीं पाए जाते। यानी इनमें कोई रस्सी से बांधा हो ऐसी कोई बात नहीं है, बस वो चिपक गए लाख और लकड़ी। जतु पद का ग्रहण यहाँ वज्रलेप और मयन आदि चिक्कन द्रव्यों का उपलक्षण है, इससे इनका भी यहाँ ग्रहण करना चाहिए। ये वज्रलेप करते हैं ना, पत्थर पर लेप देते हैं, उसको वज्रलेप कहते हैं, उसको भी यहाँ ग्रहण हो सकता है। मयन ने मेन की जो मोम जिसको कहते हैं, मैंने ने मोम ही लेना ने, कैंडल वैक्स मोम जिसको कहते हैं, मयनादि। अभी आजकल जितने भी वो चिकने पदार्थ शुरू हो गए वो सब इसमें ले सकते हैं, चिक्कन द्रव्य. अभी फेविकॉल वगैरह से चिपकाया जाता है वो इसमें ले लेंगे. सरस है, फेविकॉल है, गम है, जो कुछ बातें हैं. जो सो शरीर बंधो नाम सो पंचवी हो. ओरालीय शरीर बंधो, वेयुवीय शरीर बंधो, आहार शरीर बंधो, तेया शरीर बंधो, कमय शरीर बंधो चेदी. जो शरीर बंध है वह पांच प्रकार का है. औदारिक शरीर बंध, वैकिरिक शरीर बंध, आहारक शरीर बंध, तेजस शरीर बंध और कारमान शरीर बंध. इस प्रकार पांच प्रकार का ही शरीर बंध होता है, क्योंकि इनसे पृथकभूत दूसरा शरीर बंध नहीं उपलब्ध होता. अब एकादि संयोग रूप औदारिक शरीर के बंध विकल्पों को उत्पन्न कराने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं. अभी इसमें वो दो दो का संयोग बताएंगे. एकादि ने पहले एक तो बता दिए, औदारिक तेजस वैकिरिक वगैरह पांच बताए, अभी दो दो के संयोग बताएंगे, फिर तीन के भी बताने चाहिए. हाँ, एक क्रम से पढ़ेंगे हम. ओरालिय ओरालिय शरीर बंधो, औदारिक औदारिक शरीर बंध. औदारिक शरीर नौ कर्म स्कंधों का अन्य औदारिक शरीर नौ कर्म स्कंधों के साथ, एक औदारिक शरीर का दूसरे औदारिक शरीर के साथ नहीं कहा, उसके नौ कर्म स्कंध है. अभी नए नए स्कंध आकर उसमें जुड़ते हैं तो औदारिक का औदारिक के साथ कहेंगे हम. तो औदारिक शरीर नौ कर्म स्कंधों का अन्य औदारिक शरीर नौ कर्मों के साथ जो बंध होता है वह औदारिक औदारिक शरीर बंध है. इस प्रकार यह एक संयोग से एक ही भंग होता है. अब द्विसंयोग भंग का कथन करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं. यानी औदारिक का या औदारिक की अपने ही साथ तो उसको एक संयोगी कहा, द्विसंयोगी यानी अन्य शरीर को लेना उसमें. ओरालिय तेया शरीर बंधो, औदारिक तेजस शरीर बंध. औदारिक शरीर के पुद्गलों का, तेजस शरीर के पुद्गलों का, क्या कहते हैं, औदारिक का और तेजस शरीर के पुद्गलों का एक जीव में जो परस्पर बंध होता है वह औदारिक तेजस शरीर बंध है. अब ओरालिय कम, हाँ क्या है, एक जीव में अभी ये जो द्विसंयोगी है ना उसके भंग गिनेंगे. अभी द्विसंयोगी में भंग भी कितने कितने होते हैं, औदारिक का किस किस के साथ होगा. हाँ हाँ, औदारिक आहारक भी होगा ना कि नहीं लिए यहाँ, नहीं है. हाँ अच्छा, हम देखेंगे. देखो क्रम से पढ़ेंगे, हमारी सारी शंकाओं का समाधान होने वाला है. ये एक पहला एक भंग बताया. अब दूसरा भंग, ओरालिय कमय शरीर बंधो, औदारिक कारवण शरीर बंध करना, बद्ध हुआ है बंध. एक जीव में स्थित, एक जीव की बात है ना, एक जीव में स्थित औदारिक स्कंधों का, कारमाण और कारमाण स्कंधों का जो परस्पर बंध होता है वह औदारिक कारमाण शरीर बंध है. देखो जीव के प्रदेशों में औदारिक नौकर्म ये जो स्कंध है और फिर कारमाण के भी है एक ही प्रदेश. ऐसा नहीं कि शरीर बाहर है और अंदर कर्म पड़े. औदारिक स्कंधों का वैक्रियक और आहारक शरीर के साथ बंध नहीं होता, ये लिख दिया उन्होंने. क्योंकि औदारिक शरीर रूप से परिणत हुए जीव में शेष दो शरीरों का अभाव पाया जाता है. क्या कहना चाहते हैं ये मुनिराज को, जो आहारक शरीर बनता है तो ये औदारिक शरीर यहाँ है और मस्तक से वो दूसरा शरीर बनते बाहर निकलता है ना, और फिर मूल शरीर में फिर वो प्रवेश करते हैं, जीव के जो प्रदेश बाहर निकले हैं, सबके सब प्रदेश तो नहीं निकलते, थोड़े प्रदेश बाहर निकले हैं, और वहाँ वो औदार्य आहार शरीर बनाएंगे और फिर जाके वापस लौटेंगे और फिर जीव प्रदेश मूल शरीर में पुनः प्रवेश करेंगे। तो ये औदारिक में आहारक नहीं है वहाँ पर एक साथ, और वही ख्याल में है। वहाँ औदारिक शरीर नहीं ना, उसके परमाणु वहाँ तो कार्मन तेजस हो गए, खाली आत्मा के प्रदेश ही हो गए केवल। हाँ हाँ, आहारक भी नहीं उसमें, औदारिक भी नहीं। हाँ, और हाँ, जैसे वही आत्मा के प्रदेश ही है केवल, उसमें शरीर नहीं। नहीं, हाँ तेजस कर्मण है ना, वो पहले बताया उसमें। हाँ, औदारिक और आहारक नहीं है। हाँ, नजदीक हो गए, अलग ही है ना टोटल है। अभी यहाँ दूसरा कुछ कर, अभी आहारक शरीर मुनिराज के वहां तीर्थंकर के पास गया, तो बीच में पूरा ही आहारक शरीर नहीं है ना, बीच में केवल आत्मा ही के प्रदेश है। जैसे विक्रिया में क्या होता है, अभी इंद्र महाराज वहां ऊपर बैठे हैं और विक्रिया से दूसरा शरीर यहाँ आया, बीच में क्या होगा, वो आत्मा प्रदेश है जिसमें कार्मण तेजस है, आत्मा के प्रदेश पूरे ही पूरे फैले हैं। यहाँ कुछ दूसरा बता रहे, देखो शंकाकार पूछ रहे हैं, इसके वैकृत शरीर का अभाव भले ही रहा आवे, यानी औदारिक के साथ वो वैकृत नहीं है, वो तो हम मान सकते हैं क्योंकि उसका देव और नारकियों के ही अस्तित्व देखा जाता है, किंतु आहारक शरीर तो मनुष्यों के ही होता है, इसलिए औदारिक शरीर के साथ आहारक शरीर का संबंध होना चाहिए, ये प्रश्न है। समाधान, नहीं, क्योंकि आहारक शरीर रूप से परिणमन करने वाले जीवों के औदारिक शरीर का उदय नहीं होने से, दूसरा ही बताए बात, उसके साथ संबंध नहीं होता, उदय नहीं है। उस दिन बात आई थी ना, उदय नहीं होता उसके परमाणु भी ग्रहण कैसे हो गए। हाँ, आहारक शरीर के परमाणु, हाँ, मगर अरविंद भाई का कहना है कि उसका भी ग्रहण करते हैं, परंतु कंपन, परंतु वो किसका अवलंबन, परंतु कौन सी जाति के ग्रहण करेंगे, तो अभी जहाँ बात आएगी इसमें वो क्लियर करेंगे। हाँ, वो कृति कर्म की जब बात आई थी, हुई थी अपने कृति नाम की, उसमें ये बात होके गई अपने। हाँ, तो इसीलिए उसके बारे में अभी विषय वो यहाँ नहीं लेंगे, ये कृति कर्म वाला जो हमने पहले एक अनुयोग मेरे ख्याल से 10वीं पुस्तक या 9वीं में ही लिया था, उसको फिर दोबारा देखना। हम आगे देखते हैं इस प्रकार, नहीं कॉन्फ्लिक्ट नहीं है जब तक, हाँ मुझे जब तक डेफिनेट नहीं लगता है तब तक उसके बारे में फिर हम दोबारा देखकर कहेंगे तो अच्छा है ना। इस प्रकार द्विसंयोगी भंग का कथन किया। अब त्रिसंयोगी भंग का कथन करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं, ओरालिय तेया कम्मय शरीर बंधो, औदारिक तेजस कार्मण शरीर बंध। एक जीव में निविष्ट हुए औदारिक शरीर, तेजस शरीर और कार्मण शरीर के स्कंधों का जो परस्पर बंध होता है वह औदारिक शरीर, औदारिक तेजस कार्मण शरीर बंध है। इस प्रकार त्रिसंयोगी एक ही भंग होता है। द्विसंयोगी में दो देखे थे और त्रिसंयोगी में एक। अब वैकिरेक शरीर के एकादि संयोगी भंगों का कथन करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं, वेयुव्य वेयुव्य शरीर बंधो, वैकिरेक वैकिरेक शरीर बंध, वेयुव्य तेया शरीर बंधो, ये द्विसंयोगी। वैकिरेक तेजस शरीर बंध, वेयुव्य कम्मय शरीर बंधो, वैकिरेक कार्मण शरीर बंध। और त्रिसंयोगी में वेयुव्य तेया कम्मय शरीर बंधो, वैकिरेक तेजस कार्मण शरीर बंध। ये चारों ही सूत्र सुगम हैं। अब आहारक शरीर के भंगों का कथन करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं, आहार आहार शरीर बंधो, आहारक आहारक शरीर बंध, आहार तेया शरीर बंधो, आहारक तेजस शरीर बंध, आहार कम्मय शरीर बंधो, आहारक कार्मण शरीर बंध। अब त्रिसंयोगी, आहार तेया कम्मय शरीर बंधो, आहारक तेजस कार्मण शरीर बंध, ये चार सूत्र भी सुगम हैं। अब तेजस शरीर की बात करेंगे, तेया तेया शरीर बंधो, तेजस तेजस शरीर बंध, तेया शरीर कम्मय शरीर बंधो, तेजस शरीर कार्मण शरीर बंध, ये द्विसंयोगी हो गया। शंका, श के ऊपर बिंदी है, जरा स्पष्ट है, स्पष्ट करना। शेष भंग यहाँ क्यों नहीं कहे? हाँ, तेजस का औदारिक के साथ भी है, वैकिरेक के साथ भी है, कार्मण, हाँ तो कहे, पहले हो चुके हैं ना, हाँ क्यों नहीं कहे उसका समझ नहीं, क्योंकि पुनरुक्त दोष का प्रसंग प्राप्त होता है। पहले औदारिक के साथ भी लिया, वैकिरेक के साथ भी लिया, आहारक के साथ भी लिया, अभी ऐसा दोबारा लेने की जरूरत नहीं है। कम्मय कम्मय शरीर बंधो, कार्मण कार्मण शरीर बंध, यहाँ एक ही भंग होता है और इसका भी पहले द्विसंयोगी में सबके साथ ले चुके हैं, इसलिए अब यहाँ नहीं लेंगे। शंका, शेष भंग भी होते हैं, फिर वे किस लिए नहीं कहे? समाधान, क्योंकि उनका कथन पहले कराए हैं। सो सवो शरीर बंधो नाम, वह सब शरीर बंध है। यह 15 प्रकार का बंध शरीर बंध है, ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए। अब शरीरी बंध की बात करेंगे, जो सो शरीरी बंधो नाम सो दुवी हो, सादीय शरीरी बंधो चेव, अनादीय शरीरी बंधो चेव। जो शरीरी बंध है वह दो प्रकार का है, सादी शरीरी बंध और अनादि शरीरी बंध। इस प्रकार शरीरी बंध दो प्रकार का ही होता है, क्योंकि अन्य प्रकार के शरीरी बंध का होना असंभव है। अब इसको समझाएंगे, जो सो सादीय शरीरी बंधो नाम, सो जहा शरीर बंधो तहा नेदौवा। जो सादी शरीरी बंध है वह शरीर बंध के समान जानना चाहिए। शरीरी जीव को कहते हैं, उसका जो औदारिक आदि शरीरों के साथ बंध होता है वह शरीरी बंध है। इसके भंगों का कथन, जिस प्रकार शरीर बंध के भंगों का कथन किया है उस प्रकार करना चाहिए। यथा औदारिक शरीर के साथ शरीरी का बंध, वैकिरेक शरीर के साथ शरीरी का बंध, आहारक शरीर के साथ शरीरी का बंध, तेजस शरीर के साथ शरीरी का बंध, कार्मण शरीर का साथ शरीरी का बंध और शरीर के साथ शरीर का बंध। शंका, क्या कहते हैं? नया नया ग्रहण करता है ना, प्रवाह की अपेक्षा ना दी है। अभी वैकिरिक शरीर में से आया औदारिक शरीर में, उसने नया ग्रहण किया ना, और कर्म भी नए नए स्कंध ग्रहण करता है। ये शरीर हाँ वो बता रहे, देखो शंका यहाँ छठवा भंग कैसे बन सकता है, पूछा ना समझ नहीं, क्योंकि जो कर्म और नो कर्म का अनादि संबंध होने से मूर्तपने को प्राप्त हुआ है, और जिसके गणलोक प्रमाण जीव प्रदेश योग के वश से संकोच स की बिंदी स्पष्ट करना है, वहां पर संकोच और विस्तार धर्म वाले हैं, ऐसे जीव के अवयवों के परतंत्र लक्षण संबंध से छठे भंग की उत्पत्ति होने में कोई विरोध नहीं है। देखो फिर क्या कहते हैं, ये तो मूर्तपना क्यों कहा, क्योंकि कर्म और नौकर्म का उसके साथ अनादि का ही संबंध पाया जाए, ऐसा नहीं था कि कभी कर्म थे ही नहीं, ऐसा कभी नहीं था, तो जीव को मूर्त भी कहते हैं कथनचित। यानी संकोच विस्तार ने उसमें परिस्पंदन चल रहा है, योग चल रहा है। आपका प्रश्न है, जब योग नहीं होगा तो पूरा ही विकास होना चाहिए, क्यों? अकेला संकोच होता था कि संकोच और विस्तार भी होता था? संकोच विस्तार ने उसका जो कुछ परिस्पंदन है वैसे होता। अभी वो तो निष्कंप हुआ, तो निष्कंप हुआ इसलिए पूरा बड़ा लोकाकाश इतना होना चाहिए बात नहीं रहती उसमें, क्या है वो उसका स्वभाव नहीं है, पूरे लोकाकाश को व्याप्त करना है उसका स्वभाव नहीं है। ऐसे होते थे सभी जो सिद्ध हो चुके हैं वो सिद्धालय में नहीं होते, पूरे लोक में एक एक जीव व्याप्त होता। अभी उसको आकार जो लास्ट था उसको बदलने का कोई प्रयोजन ही नहीं रहा उनका, क्योंकि वहां कोई कर्म का ऐसा निमित्त जो पहले था वैसा अभी नया कोई निमित्त नहीं कि जिसके कारण आकार बदल जावे। पहले शरीरी बंध में देखो, पहले जो हमने 37 पेज पर जो शरीरी बंध की डेफिनेशन देखी थी, जीव प्रदेशों का नीचे से दूसरी लाइन, जीव प्रदेशों का जीव प्रदेशों के साथ और पांच शरीरों के साथ जो बंध होता है वह शरीरी बंध कहलाते हैं, ऐसे वहां कहा था ना। यही बात शरीरी के साथ, यानी वो स्वयं शरीरी है तो उसका अन्य शरीरी के साथ क्या संबंध होगा, ऐसा लगता है ना हमको, तो उसके अवयव लेना, उसी के जीव के अवयवों का जो ये जो कर्म नौकर्म के साथ संबंध है कथनचित मूर्त है और योग का संकोच विस्तार होने वाला है, ऐसे जो जीव के अवयवों के परतंत्र लक्षण संबंध से, अवयवों का जो संबंध है, आत्म प्रदेशों का जो संबंध है, उसी को यहाँ शरीरी बंध कहा है, या शरीरों के साथ दोनों प्रकार से इसको लिया है। इस प्रकार ये छह भंग हुए हैं। परतंत्र लक्षण है भी यहाँ पर, ये जो संबंध है ना कर्म नौकर्म का वगैरह, और योग भी है यानी उसका निमित्त बनता है वहां पर। औदारिक शरीर तेजस शरीरों के साथ शरीरिका बंध, औदारिक कार्मण शरीरों के साथ शरीरिका बंध। पहले कौन से लिया था? एक एक शरीर को लिया था, अब शरीरी और दो दो शरीर ले रहे हैं। औदारिक तेजस के साथ शरीरी, औदारिक कार्मण शरीरों के साथ शरीरिका बंध और औदारिक तेजस कार्मण शरीरों के साथ शरीरिका बंध। इस प्रकार औदारिक शरीर की विवक्षा होने पर तीन भंग होते हैं। अब शरीर यानी जीव अब यू वैक्रिय के साथ लगाएंगे। वैक्रिक और आहारक शरीरों के इसी प्रकार तीन तीन भंग कहने चाहिए, यानी वैक्रिक तेजस के साथ शरीरी, वैक्रिक कार्मण के साथ शरीरी और वैक्रिक तेजस और कार्मण के साथ शरीरी। आहारक में भी ऐसा है। तेजस कार्मण शरीरों के साथ शरीरिका बंध। इस प्रकार तेजस शरीर की विवक्षा होने पर द्विसंयोगी एक ही भंग होता है, बाकी जो है वो उसके पुनरुक्त में चले जाते हैं। कार्मण शरीर में द्विसंयोगी भंग नहीं है, इस प्रकार ये 16 शरीरी बंध होते हैं। ये सादे सादी वाले ले हैं। जो अनादिय शरीरी बंधो नाम यथा अठन्नम जीवमज्ज पदेशानम अन्नोन्न पदेश बंधो भवति सो सवो अनादिय शरीरी बंधो नाम। जो अनादि शरीरी बंध है, शरीरी कहा, यथा जीव के 8 मध्य प्रदेशों का परस्पर प्रदेश बंध होता है, यह सब अनादि शरीरी बंध है। शंका, जीव के 8 मध्य प्रदेशों का जो बंध है वह अनादि शरीरी शरीररी हुआ है, शरीरी बंध है, र निकाल लेना। यह ठीक है, परंतु यह प्रयोग बंध नहीं है क्योंकि यह स्वाभाविक होता है। किसमें लिया? ये सारे प्रयोग में लिए ना। देखो 61 सूत्र 44 पृष्ठ, नहीं वहां तो शरीर ही लिया, उसके भी पहले लेना है हमको। प्रयोग जहां लिया था ना वहां से शुरू, वैश्रेषिक के बाद आज जो हमने शुरू किया था 36 पृष्ठ पर। प्रयोग बंध में हमने देखे थे कर्म बंध और नौकर्म बंध। पहले तो हमने विश्रसा वाले देखे थे, ये प्रयोग वाले हैं। प्रयोग में फिर कर्म बंध की बात तो बात के करें, अभी नौकर्म बंध देख रहे हैं। उसमें हमने ये आलापन अल्लीवन संश्लेष शरीर और शरीरी देखा। अब जो शरीरी है उसमें भी दो प्रकार देखे, एक सादी और एक अनादि। सादी में वो शरीरों के साथ जो है उसको सादी कहा, और जो अनादि शरीरी बंध है उसकी बात अभी बता रहे हैं। तो इसको प्रयोग बंध क्यों कहा? ये तो नेचुरल है, ऐसा इसका कहना है। समाधान, यह कोई दोष नहीं क्योंकि दृष्टांत द्वारा अनादि शरीरी बंध का यहाँ निर्देश किया है। जिस प्रकार जीव के 8 मध्य प्रदेशों का अनादि बंध होता है, उसी प्रकार शरीर का जो पूर्व काल की मर्यादा से रहित बंध है वह अनादि शरीरी बंध है, ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए। अब शंकाकार पूछता है वो बंध क्या है, उसका समाधान। शरीरी का कर्म और नौकर्म सामान्य के साथ जो बंध है वह अनादि शरीरी बंध है। क्या कहा? विशिष्ट कर्म की बात विवक्षित की करेंगे तो सादी हो गया, परंतु प्रवाह रूप से अनादि से ही वो चला आया है इसलिए उसको अनादि शरीरी बंध कहा, इसलिए सामान्य शब्द डाला बीच में। कर्म नौकर्म सामान्य के साथ जो बंध है वह अनादि शरीरी बंध है। अब यहां तक तो नौ कर्म बंध की बात कही। जो सो थप्पो कम्म बंधो नाम यथा कम्मेति तहा नेदव्यम। जो कर्म बंध स्थगित कर आए हैं, ये कौन सा चल रहा था अपना विषय कि जिसका एक भाग कर्म बंध था? हा? प्रयोग बंध नहीं था, प्रयोग बंध नहीं था, द्रव्य बंध, द्रव्य द्रव्य की बात चल रही, नो आगम द्रव्य की बात चल रही थी ना, द्रव्य निक्षेप की बात चल रही थी। देखो जहां हमने कर्म बंध को स्थगित किया था वहां से देखो, सत्ताईस पेज है। हाँ देखो, सत्ताईस पेज पर 24 नंबर के सूत्र में हमने देखा था जो द्रव्य बंध स्थगित कर रहे हैं उसको देखेंगे, उसमें आगम द्रव्य बंध और नो आगम द्रव्य। आगम में तो हमने सूत्र के अलग अलग प्रकार और उपयोग के अलग अलग प्रकार देखे, और नो आगम द्रव्य में आगे के पृष्ठ पर देखना। हाँ नो 28 पृष्ठ पर नो आगम द्रव्य बंध दो प्रकार का देखा था, प्रयोग बंध और विसरसा बंध। प्रयोग बंध स्थगित करके विसरसा बंध को देखा था हमने, सादी विसरसा और अनादि विसरसा। अब आगे चलते हैं, विसरसा के बाद वो प्रयोग बंध को दोबारा लिया उन्होंने। अब जो प्रयोग बंध 36 पेज पर, प्रयोग बंध जो स्थगित कराए थे उसके भी दो भेद, कर्म बंध और नो कर्म बंध। नो कर्म बंध को हमने अभी जो शरीरों के साथ वगैरह वगैरह अलग अलग देखे, आलापन अल्लीवन वगैरह, और उसके बाद ये जो कर्म बंध जो स्थगित कर आए थे। हाँ यानी कर्म बंध कौन सा प्रकार था, दो प्रकार, प्रयोग बंध वाले में से कर्म बंध था। वो प्रयोग बंध क्या था, विसरसा और प्रयोग वाले भेद थे, वो किसके थे, नो आगम के थे। हाँ अब इसको देखेंगे यहाँ पर कि जो कर्मबंध स्थगित कर आए हैं उसे कर्म अनुयोग द्वार के समान जानना चाहिए। कर्मबंध के 64 भंग जिस प्रकार कर्म अनुयोग द्वार में कहे हैं उसी प्रकार कहने चाहिए। इस प्रकार संक्षेप से कथन करने पर बंध अनुयोग द्वार समाप्त हुआ। ये बंद, ये पहले हमने देखे ना कर्म, उसकी मूल प्रकृति उत्तर प्रकृति वगैरह बहुत विस्तार से देखे थे, तो कहते वो यहाँ जान लेना चाहिए। कौन सा हुआ अभी, बंध अनुयोग द्वार हुआ। हमने चार भेद कौन से देखे थे, हाँ बंध बंधक बंधनी और बंध विधान। हाँ तो इसमें से एक यहाँ समाप्त हुआ। अब बंधगाणुयोगद्वारम, बंधग अनुयोगद्वारम, यहां से भी नया शुरू होता है। जेते बंधगाणाम तेसिम इमो निर्देशो, गदी इंदिये काये जोगे वेदे कसाये नाने संजमे दंसने लेसा भव्य सम्मत सन्य आहारे चेदी। जो बंधक है उनका यह निर्देश है, गति इंद्रिय काय योग वेद कषाय ज्ञान संयम दर्शन लेशा भव्यत्व सम्यक्त्व संगी और आहार। ये क्या है, नाम किसके है, 14 मार्गणा। हाँ यह सूत्र 14 मार्गणा स्थानों का प्ररूपण करता है, अन्यथा बंधक का कथन नहीं बन सकता। इन मार्गणा स्थानों का जिस प्रकार क्षुल्लक बंध में कथन किया है उस प्रकार करना चाहिए। क्षुल्लक बंध ने खुद्दा बंध खुद्दा बंध आया था ना अपना। हाँ अब इसको बताएंगे क्रम से। गदीयाणु वादेन निरय गदीय निरैया बंधा तिरिखा बंधा देवा बंधा मनुषा बंधा वि अथी अबंधा वि अथी। मनुष्य में क्या है बंधा, सब में बंधा कहा, कौन, नारकी देव और तिर्यंच। मनुष्य में क्या करे, बंधा भी अथि अबंधा भी अथि सिद्धा अबंधा एवं खुद्दा बंध एकारस अनुयोग दारम ने यवम। गति मार्गणा के अनुवाद से नरक गति में नारक जीव बंधक हैं, तिर्यंच बंधक हैं। बंधक बंधक दो बार हुआ, देव चाहिए, तिर्यंच बंधक है, देव बंधक है। आगे दो शब्द रह गए, तिर्यंच बंधक है डालो, कॉमा लगाना और वहां देव लिखना, देव बंधक है। समझ में कहां लिखना है? हाँ, तिर्यंच लिखा ना, तिर्यंच बंधक, आगे लिखना है, कॉमा देना, वहां स्पेस छुटी है उसकी, और फिर लिखना देव। मनुष्य बंधक भी है और अबंधक भी है। कौन है मनुष्यों में अबंधक? चौदहवें गुणस्थान वाले, मनुष्य गति की बात है, और सिद्ध अबंधक है। अच्छा, प्रिंट आ गया? हाँ, अच्छा, उनमें प्रिंटिंग है, हमारे इसमें, आपके इसमें भी है? अच्छा, हाँ, इसलिए आप कहते हो ये कहाँ लिखना है क्या। हाँ, सिद्ध बंधक है। इस प्रकार यहाँ क्षुल्लक बंधक के 11 अनुयोग द्वार जानने चाहिए। ये खुद्दा बंधक नाम, ये पुस्तक जो हमने पहले पढ़ चुके हैं ना, वो मार्गणा आदि के, उसकी बात यहाँ समझ लेना। इस स्थान पर क्षुल्लक बंध के 11 अनुयोग द्वारों का कथन करना चाहिए। हमने ग्रंथ के बढ़ जाने के भय से उनका कथन यहाँ नहीं किया है। पहले हम पढ़ चुके हैं सारे। हाँ, एवं महादंडया नियोवा, इसी प्रकार महादंडक जानने चाहिए। 11 अनुयोग द्वारों का कथन करके अनंतर महादंडकों का भी कथन करना चाहिए। विशेषार्थ, यहाँ बंधक का कथन करते हैं। पहले यह कथन क्षुल्लक बंध में कर आए हैं, इसलिए यहाँ उसके अनुसार ही इस कथन के करने की सूचना की है। क्षुल्लक बंध में सर्वप्रथम बंधक के कथन की प्रतिज्ञा की है, अनंतर 14 मार्गणाओं का नाम निर्देश करके उनमें से प्रत्येक मार्गणा में कौन बंधक है और कौन अबंधक है यह बतलाया है। अनंतर एक जीव की अपेक्षा स्वामित्व आदि 11 अनुयोगों के द्वारा बंधक का कथन करके अंत में महादंडक दिए हैं। यहाँ भी इसी प्रकार कथन करने से बंधक अनुयोग द्वार समाप्त होता है, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। ये पहले बहुत विस्तार से पूरी पुस्तक में लिख चुके हैं, इसलिए अभी यहाँ दोबारा उन्होंने यह नहीं लिया है। इस प्रकार बंधक यह अनुयोग द्वार समाप्त हुआ। ये पूरा अनुयोग दो एक पेज में है ना, क्योंकि हमने पहले पढ़ा है इसको विस्तार से। अब ऊपर देखो, बंधनिज्जाणु योगद्वारम, बंधनिच अनुयोग द्वारम, यानी बंधनीय अनुयोग द्वार। जम तम बंधनिजम नाम तस्स इमम अनुगमनम कस्सामु, वेदन अप्पा पोगला पोगला खंद समुद्दिठा खंदा वग्गण समुद्दिठा। जो बंधनीय है उसका इस प्रकार अनुगमन करते हैं। वेदन स्वरूप पुद्गल है, पुद्गल स्कंद स्वरूप है, और स्कंद वर्गणा स्वरूप है। वो स्वनिट स्व करना, क्या आपने कहा? हाँ, वो चाहिए, स्वरूप है। जो वेदे जाते हैं उन्हें वेदन कहते हैं। जीव से पृथकभूत बंधयोग्य कर्म और नौकर्म स्कंध बंधनीय कहलाते हैं। बंधयोग्य को बंधनीय कहा? शंका, वे वेदन रूप कैसे हो सकते हैं? जो पृथकभूत है तो उसको वेदनीय क्यों कहा, वेदनभूत क्यों कहा, वेदन क्यों कहा, वेदन रूप क्यों कहा? समाधान, नहीं, क्योंकि जो द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की अपेक्षा वेदना योग्य है उनमें द्रव्यातिक नहीं की अपेक्षा वेदना शब्द की प्रवृत्ति स्वीकार की गई है। वेदनपना जिनका आत्मा अर्थात स्वरूप है वे वेदनात्मा कहलाते हैं। आत्मा यानी वो जीव की बात नहीं है, नहीं समझे? आत्मा यानी उसका स्व है, जैसे हम स्कूल में कहते हैं वो छाते का आत्मचरित्र लिखो, ऑटोबायोग्राफी, ये वो स्व, उसका आत्मा। तो वेदनपना जिनका आत्मा अर्थात क्या लिखा, स्वरूप है, आत्मा शब्द भूल जाओ, वेदनपना जिनका स्वरूप है उनको क्या कहेंगे, वेदन स्वरूप कहेंगे या वेदन आत्मा कहेंगे, आत्मक शब्द भी आता है ना। हाँ, यहाँ इस पद से पुद्गलों का ग्रहण करना चाहिए, पुद्गल वेदन स्वरूप है, वेदनात्मक है, यहाँ जीव के साथ की बात नहीं है, आत्मा शब्द से जीव को नहीं यहाँ लिखा है। पुद्गलों का अपना स्वरूप क्या है, तो वेदन स्वरूप है वे, क्योंकि अन्य कोई पदार्थ बंधनीय नहीं हो सकते, वे बंधनीय पुद्गल स्कंद समुदिष्ट अर्थात स्कंद स्वरूप कहे गए हैं। बंधनीय ने जो बंधन योग्य जो पुद्गल है वे स्कंद स्वरूप है, उसी को स्कंद समुदिष्ट कहा, क्योंकि स्कंद रूप ध करना उसका अनंतानंत परमाणु पुद्गलों के समुदाय रूप समागम से बंध योग्य पुद्गल होते हैं। एक एक परमाणु अलग अलग नहीं बन रहा है, स्कंद रूप से वो वर्गणाएं बनती है ना। इस पद से एक प्रदेशी और दो प्रदेशी आदि वर्गणाओं से पृथकभूत स्कंद नहीं पाए जाते हैं। इस पद से बंधनीय पुद्गल निर्विकल्प होते हैं इस बात का निषेध किया है। निर्विकल्प होते नहीं, उसके भेद नहीं होते इस बात का निषेध है, यानी उसमें भी वेरिएशंस है अलग अलग। इसलिए बंधनीय का कथन करते समय वर्गणा का कथन नियम से करना चाहिए, अन्यथा 23 प्रकार की वर्गणाओं में ये वर्गणा ही बंध योग्य है। देखो पुद्गल तो अनेक प्रकार के हैं, 23 प्रकार के बताए, तो उसमें से इतने विशिष्ट ही बनते हैं जीव के साथ, तो इतने ही बंध योग्य है, अन्य बंध योग्य नहीं है यह ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए पहले वो वर्गणाओं का सब विस्तार से कथन करेंगे। वग्गणा वग्गणानम अनुगमन ठदाए तथ इमानी अठ अनुयोग अनुयोग दाराणी नादववाणी भवन्ति। वग्गणा वग्ग वग्गण दव्व समुदाहारो अनंतरोवनिधा परंपरोवनिधा अवहारो जवमज्जम पदमीमांसा अप्पा बहुएत्ति। वर्गणाओं का अनुगमन करते समय ये 8 अनुयोग द्वार ज्ञातव्य हैं। वर्गणा वर्गणा द्रव्य समुदाहार अनंतरोपनिधा परंपरोपनिधा कॉमा लगाना अवहार अवहार यानी उसका भागार यवमध्य पदमीमांसा और अल्प बहुत्व। अब इन 8 अनुयोग द्वारों की अर्थ प्ररूपणा करते हैं यथा। शंका, यहां वर्गणा अनुयोग द्वार की प्ररूपणा किस लिए की है, उसका समाधान। एक परमाणु रूप वर्गणा से लेकर, देखो परमाणु को भी वर्गणा कहा है, तो एक परमाणु रूप वर्गणा से लेकर एक एक परमाणु की वृद्धि क्रम से महास्कंध तक। महास्कंध कितना बड़ा है? महास्कंध महामत्स्य नहीं, हाँ लोक प्रमाण। तब सब वर्गणाओं की एक श्रेणी है इस बात का कथन करने के लिए वर्गणा अनुयोग द्वार की प्ररूपणा की है। एक श्रेणी, अभी एक पंक्ति में हम सब अलग अलग लिखेंगे, एक सिंगल परमाणु, फिर 2 परमाणुओं के स्कंद, 3 परमाणु के स्कंद, ऐसे सीधे यानी एक क्रम से बताना। उसको यहाँ श्रेणी कहा है, क्रम से कथन करेंगे। फिर शंका, वर्गणा द्रव्य समुदाहार अनुयोग द्वार किस लिए आया है? उसका समाधान, पूर्वोक्त वर्गणाओं के पुद्गल क्या समान है या अन्य प्रकार है या अन्य प्रकार नहीं है? कौन वर्गणाएं ध्रुव है, कौन वर्गणाएं अध्रुव है, कौन वर्गणाएं सांतर है और कौन वर्गणाएं निरंतर है? इस प्रकार 14 अनुयोग द्वारों के द्वारा नाना श्रेणीगत और एक श्रेणीगत वर्गणा विशेष का कथन करने के लिए यह अनुयोग द्वार आया है। ये वर्गणा द्रव्य समुदाहार में उसकी बात करेंगे। ये हर एक अनुयोग द्वार क्यों आया है ऐसा पूछ रहा है। शंका, अनंत रोपनिधा अनुयोग द्वार किस लिए आया है? ये अनंत रोपनिधा याद है क्या है? क्रम से एक एक में, एक एक स्थान में या एक एक इसमें बताना, वो अनंत रोपनिधा, और फिर बहुत सारे स्थानों के बाद वो डबल है या ज्यादा है, उसको परम परोपनिधा के। समाधान, परमाणु द्रव्य वर्गणा से द्विप्रदेशी द्रव्य वर्गणा द्रव्यार्थता और प्रदेशार्थता की अपेक्षा क्या सदृश है या विसदृश है? द्विप्रदेशी द्रव्य वर्गणा से त्रिप्रदेशी द्रव्य वर्गणा द्रव्यार्थता और प्रदेशार्थता की अपेक्षा क्या सदृश है या विसदृश है? इस प्रकार अनंतर पूर्व पूर्व वर्गणा से अनंतर उपरिम उपरिम वर्गणा, क्या कहते हैं आगे आगे वाली वर्गणा, उसमें भी पूर्व पूर्व वर्गणा से उत्तर उत्तर यानी नेक्स्ट पीछे पीछे वाली उपरिम उपरिम वाली वर्गणा की द्रव्यार्थता और प्रदेशार्थता का कथन करने के लिए यह अनुयोग द्वार आया है। फिर शंका, परंपरोपनिधा अनुयोग द्वार किस लिए आया है? उसका समाधान, परमाणु रूप पुद्गल द्रव्य वर्गणा से कितनी दूर जाने पर दूना होता है या द्विगुणा हीन होता है? ऐसा पूछने पर इतना स्थान जाकर दूना या आधा होता है, इस बात का ज्ञान कराने के लिए यह अनुयोग द्वार आया है। परंपरा अनुमान कितने स्थान जा पर वो दुगुना होते हैं, उल्टे क्रम से वहां से पीछे से देखे तो आधे होते हैं, उसको परंपरोपनिधान कहना। शंका, अवहार अनुयोग द्वार किस लिए आया है? एक एक वर्गणा द्रव्यार्थता और प्रदेशार्थता की अपेक्षा सब वर्गणाओं का कितने वा भाग है, इस भाग का ज्ञान कराने के लिए यह अनुयोग द्वार आया है। यह अवहार आता है तो प्रेरणा बेन को बहुत अच्छा लगता है। अवहार आगे, यव मध्य प्ररूपणा किस लिए आई है? उसका समाधान, विशेष अधिक क्रम से जाती हुई वर्गणाओं का किस स्थान पर प्रदेशों की अपेक्षा यव मध्य होता है अथवा नहीं होता है? ऐसा पूछने पर इतना स्थान पर जाकर यव मध्य होता है ऊपर गया, हाँ मेरे में ऊपर वो प्रिंट हुआ है, इस बात का ज्ञान कराने के लिए यह अनुयोग द्वार आया है। फिर शंका, पदमीमांसा अनुयोग द्वार किस लिए आया है? उसका समाधान, सब वर्गणाओं के उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट जघन्य और अजघन्य आदि पदों की गवेषणा करने के लिए, गवेषणा ने खोज करना, उसके संबंध में समझना, यह अनुयोग द्वार आया है। फिर शंका, अल्प बहुत्व प्ररूपणा किस लिए आई है? उसका समाधान, 23 वर्गणाओं की द्रव्यार्थता और प्रदेशार्थता के अल्प बहुत्व का कथन करने के लिए यह प्ररूपणा आई है। यानी वो अनुयोग द्वारों में किसका कथन होगा उस हमें इंट्रोडक्शन दिए है, अभी एक एक के लिए विस्तार से बताएंगे। वग्गणाति तथ्य, इमानी वग्गणाएं 16 अनुयोग दाराणी, वग्गण निखेवे, वग्गण नये विभाषण दाये, वग्गण परूवणा, वग्गण निरूवणा, वग्गण धुआ धुआनुगमो, वग्गण सांतर निरंतरानुगमो, वग्गण ओज जुम्मानुगमो, વગણ ખેતાનું ગમો, વગણ ફોસનાનું ગમો, વગણ કાલાનું ગમો, વગણ અનંતારુનું ગમો, વગણ ભાવાનું ગમો, વગણ ઉવણયણાનું ગમો, વગણ પરિમાણાનું ગમો, વગણ ભાગા ભાગાનું ગમો, વગણ અપ્પા બહુએતી. વર્ગણા કા પ્રકરણ હૈ, ઉસકે વિષય મેં યે સોલહ અનુયોગ દ્વાર હોતે હૈ. વર્ગણા નિક્ષેપ, વર્ગણા નય વિભાષણતા, વર્ગણા પ્રરૂપણા, વર્ગણા નિરૂપણા, વર્ગણા ધ્રુવાધ્રુવાનુગમ, વર્ગણા સાંતર નિરંતરાનુગમ, વર્ગણા ઓજજુગમાનુગમ, વર્ગણા ક્ષેત્રાનુગમ, વર્ગણા સ્પર્શાનુગમ, વર્ગણા કાલાનુગમ, વર્ગણા અંતરાનુગમ, વર્ગણા ભાવાનુગમ, વર્ગણા ઉપનયનાનુગમ, વર્ગણા પરિમાણાનુગમ, વર્ગણા ભાગા ભાગાનુગમ, ઓર વર્ગણા અલ્પભૂતવાનુગમ. ક્યા હુઆ, 14 હૈ? ક્યું ક્યું ફિર સે દેના નંબર. હા, નય વિભાષણતા, પ્રરૂપણા, પ્રરૂપણા હૈ, હા, ચાર નિરૂપણા, હા, વર્ગણા ધ્રુવાધ્રુવ પાંચમી મિલા. પંદરા ઓર સોલા હૈ. અબ વર્ગણા દો પ્રકાર કી હૈ, અભ્યંતર વર્ગણા, બાહ્ય વર્ગણા. જો બાહ્ય વર્ગણા હૈ વહ પાંચ શરીરો સંબંધી ચાર અનુયોગ દ્વારો કે દ્વારા આગે કહેંગે. બાહ્ય વર્ગણા કી બાત. જો અભ્યંતર વર્ગણા હૈ વહ એક શ્રેણી ઓર નાના શ્રેણી કે ભેદ સે દો પ્રકાર કી હૈ. ઉનમે સે એક શ્રેણી વર્ગણા કે યે સોલહ અનુયોગ દ્વાર જ્ઞાતવ્ય હૈ. અબ ઇન સોલહ અનુયોગ દ્વારો કે દ્વારા યથાક્રમ સે વર્ગણાઓ કા વિચાર કરેંગે. અબ યે સારે નિક્ષેપ નય વગેરે સબ યે જો સોલહ બતાએ હૈ ઉસકી અપેક્ષા સે વિચાર કરેંગે. વગણ નિખેવે તી છવ્વી હૈ વગણ નિખેવે. નામ વગણા, ઠવણ વગણા, દવ વગણા, ખેત વગણા, કાલ વગણા, ભાવ વગણા ચેદી. વર્ગણા નિક્ષેપ કા પ્રકરણ હૈ. વર્ગણા નિક્ષેપ છ પ્રકાર કા હૈ. નામ વર્ગણા, સ્થાપના વર્ગણા, દ્રવ્ય વર્ગણા, કાલ વર્ગણા ઓર ભાવ વર્ગણા. ઓ ક્ષેત્ર રહે ગયા, દ્રવ્ય કે બાદ ક્ષેત્ર રહે ગયા. ક્ષેત્ર વર્ગણા લિખના વહા. જો નિશ્ચય મેં રખતા હૈ વહ નિક્ષેપ હૈ. શંકા, વહ નિક્ષેપ કિસલે કરતે હૈ? ઉસકા સમાધાન, પ્રકૃત કા નિરૂપણ કરને કે લિયે, યાની જો અપના વિષય હૈ ઉસકા નિરૂપણ કરને કે લિયે. કહા ભી હૈ અવગય નિવારણઠ્ઠમ પયદસ્સ પરુવણા નિમિત્તમ ચ સંશય વિનાશનઠ્ઠમ કહા ભી હૈ. અપ્રકૃત અર્થ કા નિરાકરણ કરને કે લિયે, યાની જો અવિવક્ષિત હૈ ઉસકા નિરાકરણ, પ્રકૃત અર્થ કા કથન કરને કે લિયે, સંશય કા વિનાશ કરને કે લિયે ઓર તત્વાર્થ કા નિશ્ચય કરને કે લિયે નિક્ષેપ કિયા જાતા હૈ. શંકા, યહાં છહ હી નિક્ષેપ કિસ લિયે કહે ગયે હૈ કિયે ગયે હૈ? ઉસકા સમાધાન, યહ કોઈ દોષ નહીં હૈ, ક્યોંકિ નિક્ષેપ છહ હી હોતે હૈ એસા કોઈ નિયમ નહીં હૈ. હમને પહેલે બહોત દેખે થે નિક્ષેપ કે બારે મેં, પહેલી પુસ્તક મેં તો બહોત વિસ્તાર સે દેખા, હર નયા વિષય આતા તો ઉસ પર યે સબ નિક્ષેપ લગાતે હમ. વર્ગણા શબ્દ નામ વર્ગણા હૈ, નામ નિક્ષેપ. વહ યહ હૈ ઇસ પ્રકાર બુદ્ધિ દ્વારા વર્ગણા રૂપ સે સંકલ્પિત અર્થ સ્થાપના વર્ગણા હૈ. जिसमें जिस पदार्थ में हम वर्गणा रूप से संकल्प करेंगे वो स्थापना वर्गणा है। द्रव्य वर्गणा दो प्रकार की है, आगम द्रव्य वर्गणा और नो आगम द्रव्य वर्गणा। वर्गणा प्रावृत को जानने वाला किंतु वर्तमान में उसके उपयोग से रहित जीव आगम द्रव्य वर्गणा है। नो आगम द्रव्य वर्गणा तीन प्रकार की है, न्यायिक शरीर नो आगम द्रव्य वर्गणा, भावी नो आगम द्रव्य वर्गणा। भावी में किसको लेना? हाँ, जो जीव लेना, जो अभी नहीं जान रहा है, जो भविष्य में जानेगा। और ज्ञायक शरीर में तीन भेद होते हैं, उसमें भी एक भव्य वाला भेद है। वो जानने वाले जीव का भविष्य का शरीर लेना, भावी नो आगम द्रव्य वर्गणा, तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य वर्गणा। ज्ञायक शरीर और भावी नो आगम द्रव्य वर्गणा सुगम है। तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य वर्गणा दो प्रकार की है, कर्म वर्गणा और नो कर्म वर्गणा। उनमें से आठ प्रकार के कर्म स्कंधों के भेद कर्म वर्गणा है तथा शेष 19 प्रकार की वर्गणाएं नो कर्म वर्गणाएं हैं। एक आकाश प्रदेश प्रमाण अवगाहना से लेकर प्रदेशोत्तर ने एक एक प्रदेश अधिक आदि के क्रम से कुछ कम घनलोक तक ये सब क्षेत्र वर्गणाएं हैं, उनको हम क्षेत्र वर्गणा कहेंगे। कर्म द्रव्य की अपेक्षा एक समय अधिक तक आवली से लेकर उत्कृष्ट कर्म स्थिति तक, अधिक तक आवली से लेकर नहीं, अधिक आवली से लेकर तक नहीं चाहिए वहां। समया हिया वली पहुड़ी, देखो ऐसा पढ़ना है इसमें। अभी वो द्रव्य की बात होगी ना, अभी काल निक्षेप लगा रहे, काल वर्गणा किसको कह रहे हैं उसकी बात चल रही है। तो कहते हैं कर्म द्रव्य की अपेक्षा एक समय अधिक आवली से लेकर, वो तक निकाल देना वहां, उत्कृष्ट कर्म स्थिति तक। कर्मों के बारे में काल वर्गणा किसको कहेंगे? अंतर्मूर्त है ना, आवली प्लस एक समय से लेकर कितना, उत्कृष्ट कर्म स्थिति तक। और नो कर्म द्रव्य की अपेक्षा एक समय से लेकर असंख्यात लोक प्रमाण काल तक, स के ऊपर बिंदी लगाना, असंख्यात वाले, ये सब काल वर्गणाएं हैं। क्योंकि उनमें केवल शरीरों की नहीं, वो 19 प्रकार की वर्गणाएं लिए उसके अंदर। भाव वर्गणा दो प्रकार की है, आगम भाव वर्गणा और नो आगम भाव वर्गणा। वर्गणा प्रावृत को जानने वाला और वर्तमान में उसके उपयोग से युक्त जीव आगम वर्गणा है। और नो आगम भाव वर्गणा किसको लेना? औदयिक आदि पांच भावों के जो भेद हैं, वे सब नो आगम भाव वर्गणा है। इस प्रकार वर्गणा निक्षेप अनुयोग द्वारा समाप्त हुआ। हमेशा पहले निक्षेप बताकर, नाम बताकर नए विभाषणता लेते हैं, इस बार वो सारे विस्तार से समझाए, शॉर्ट में, विस्तार से और शॉर्ट में दोनों। अब नए विभाषणता देखेंगे। वगण नय विभाषण दाये कोण वो कावो वगणाओ इच्छति नेगम वार संगहा सौवाहो। वर्गणा नय विभाषणता का प्रकरण है, कौन नय किन वर्गणाओं को स्वीकार करता है, इसी में उत्तर दिया। हमेशा दो अलग अलग वो सूत्र बनाते हैं, नैगम व्यवहार संग्रह नय सब वर्गणाओं को स्वीकार करते हैं। ये अभी तक हम हमेशा देखते आए, व्यवहार के बाद कॉमा लगाना। क्योंकि इन तीनों द्रव्यार्थिक नयों के छह निक्षेप विषय है, इस बात के स्वीकार करने में कोई विरोध नहीं आता। उजुसुदो ठवण वगणाम ने इच्छदी, रुजुसूत्र ने स्थापना वर्गणा को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि स्थापना निक्षेप उसका विषय नहीं है, क्योंकि संकल्पवश अन्य द्रव्य का अन्य द्रव्य रूप से परिवर्तन होने में विरोध आता है। सद्दणव नाम वगणाम भाव वगणाम च इच्छति, शब्द ने नाम वर्गणा और भाव वर्गणा को स्वीकार करता है, क्योंकि इस नय के विषय अन्य निक्षेप नहीं है। शंका, यह किस निक्षेप का प्रकरण है? ये तो कौन सा नय किसको स्वीकार करता है तो बात हो गई, अपने पुस्तक में किसकी बात करेंगे? समाधान, नो आगम पुद्गल द्रव्य निक्षेप का प्रकरण है। देखो, यह हमने किस में लिया था, वो नो आगम पुद्गल द्रव्य निक्षेप, द्रव्य में, द्रव्य वर्गणा में आगम और नो आगम देखे थे। नो आगम में ज्ञायक्षरिक, भावी और तद व्यतिरिक्त देखे थे, और तद व्यतिरिक्त के दो भेद देखे थे, कर्म और नो कर्म। तो ये नो आगम पुद्गल द्रव्य निक्षेप का प्रकरण है, क्योंकि यहां पर जीव, धर्म, अधर्म, काल और आकाश द्रव्य वर्गणाओं से प्रयोजन नहीं है। हाँ, ऊपर वगणा दव्य समुदाहारे, ये अभी ये नए की बात हो गई, ये दव्य समुदाहार बता रहे अभी। वगणा दव्य समुदाहारे ती तथ्य इमानी चौदस अनियोग दाराणी, वगणा परुवण, वगणा निरुवण, वगणा धुआ धुआनुगमो, वगणा सांतर निरंतरानुगमो, वगणा ओज जुम्मानुगमो, वगणा खेतानुगमो, वगणा फोसानुगमो, वगणा कालानुगमो, वगणा अंतरानुगमो, वगणा भावानुगमो, वगणा उवणयनानुगमो, वगणा परिमाणानुगमो, वगणा भागा भागानुगमो, वगणा अप्पा बहुए ती। 75 के बाद वो दो लाइन लगाना। वर्गणा द्रव्य समुदाहार का प्रकरण है, उसमें ये 14 अनियोग द्वार है। वर्गणा प्ररूपणा, वर्गणा निरूपणा, वर्गणा ध्रुवा ध्रुवानुगम, वर्गणा सांतर निरंतरानुगम, वर्गणा ओज युग्मानुगम, वर्गणा क्षेत्रानुगम, वर्गणा स्पर्शनानुगम, वर्गणा कालानुगम, वर्गणा अंतरानुगम, वर्गणा भावानुगम, वर्गणा उपनयानुगम, उपनयनानुगम, वर्गणा परिमाणानुगम, वर्गणा भागा भागानुगम और वर्गणा अल्प बहुत्वानुगम। शंका, पहले भी हमने नाम पढ़े ना, अभी अभी दो बार। वर्गणा प्ररूपणा 16 अनुयोग द्वारों के द्वारा करेंगे, ऐसी प्रतिज्ञा करके क बराबर करना, वो दिख रहा है उसको। फिर वहां प्रारंभ के दो ही अनुयोग द्वारों का कथन करके, कौन से? वो निक्षेप और नए विभाषण था। तो वर्गणा में दो ही अनुयोग द्वार कहकर और शेष 14 अनुयोग द्वारों के द्वारा वर्गणा का कथन न करके वर्गणा द्रव्य समुदाहार का कथन किस लिए किया जा रहा है? क्योंकि वर्गणा में भी 16 अनुयोग द्वार लगेंगे और वर्गणा द्रव्य समुदाहार में भी ये लगेंगे। तो पहले वाले तो दो ही बताए, निक्षेप बताया और नए विभाषणता बताई, उसका समाधान नहीं, क्योंकि वर्गणा प्ररूपणा अनुयोग द्वार वर्गणाओं की एक श्रेणी का कथन करता है, किंतु वर्गणा द्रव्य समुदाहार वर्गणाओं की नाना और एक श्रेणियों का कथन करता है। इसलिए वर्गणा द्रव्य समुदाहार प्ररूपणा वर्गणा प्ररूपणा की अविनाभावी है ऐसा समझकर वर्गणा द्रव्य समुदाहार का कथन आरंभ किया, यानी उसमें वो भी बात समाहित है। अन्यथा ग्रंथ के बहुत बढ़ जाने का भय था, जिससे पुनरुक्त दोष का प्रसंग आता, यानी यहां भी बताना और वहां भी वो, क्योंकि फिर से दोबारा कथन करना पड़ता, इसलिए वेदना ये वर्गणा में द्रव्य समुदाहार में उसका कथन आने वाला ही है। वग्गणा परुवणदाय इमा एय पदेशीय परमाणु पोगल दव्व वग्गणा नामा। वर्गणा की प्ररूपणा करने पर यह एक प्रदेशी परमाणु पुद्गल द्रव्य वर्गणा है। देखो हमेशा हमने प्ररूपणा में क्या लिखा है, बस है ये कह देना वो उसकी प्ररूपणा हुई। तो ये कहते एक प्रदेशी परमाणु द्रव्य वर्गणा है, बस ये हो गए उसके प्ररूपणा। यहाँ सर्वप्रथम श्रेणी का अवलंबन लेकर वर्गणा का कथन करते हैं। एक प्रदेशी पुद्गल द्रव्य वर्गणा परमाणु स्वरूप होती है, अन्यथा एक प्रदेशी यह विशेषण नहीं बन सकता। शंका, परमाणु अप्रत्यक्ष होता है क्योंकि उसका इंद्रियों द्वारा ग्रहण नहीं होता, ऐसा सूत्र वचन है। इसलिए उसके लिए सूत्र में इमा ऐसा प्रत्यक्ष निर्देश नहीं बन सकता। ऊपर लिखा ना इमा ने यह ऐसा कहा ना, द्वारा हुआ है, इंद्रियों द्वारा। क्या कहते हैं इमा या यह ऐसा कब कहते हैं, जो प्रत्यक्ष हो उसके लिए कहते हैं। हाँ। समाधान, नहीं, क्योंकि आगम प्रमाण से सिद्ध परमाणु विषय ज्ञान के प्रत्यक्ष रूप होने पर इमा इस प्रकार प्रत्यक्ष निर्देश बन जाता है। क्या कहते हैं, ये परमाणु संबंधी जो हमारा ज्ञान है वो आगम से हमने जाना है, और वो ज्ञान तो प्रत्यक्ष है, हमने आगम से जाना है ना, और ज्ञान है, अभी ज्ञान नहीं है वो उसकी बात नहीं है। परमाणु इंद्रियों के द्वारा भले नहीं जाने परंतु आगम के द्वारा हमने जाने हैं, तो उसको ये प्रत्यक्ष वाला उसमें निर्देश आया कि यह परमाणु एक प्रदेश है। सिद्ध है, आगम प्रमाण से सिद्ध, कौन सा परमाणु विषय ज्ञान, वो ज्ञान की बात है, वो ज्ञान यहाँ है। शंका, परिक्रम में परमाणु को अप्रदेशी कहा है परंतु यहाँ पर उसे एक प्रदेशी कहा है, इसलिए इन दोनों सूत्रों में विरोध कैसे नहीं होगा। उसका समाधान, यह कोई दोष नहीं है क्योंकि परमाणु के एक प्रदेश को छोड़कर द्वितीय आदि प्रदेश नहीं होते, इस बात का परिक्रम में निषेध किया है। जिसमें द्वितीय आदि प्रदेश नहीं है वह अप्रदेश परमाणु है, यह उसकी व्युत्पत्ति है। ये कहती थी घोटाला हो गया इसमें। देखो न ऐसे दोस्तों, अभी ये जो मैंने पढ़ा ना, प्रदेश नहीं होते इसका निषेध किया है, यानी होते हैं ऐसा उस सीधा हो जाएगा। ऊपर पढ़ते हैं, नीचे से दूसरी प्राकृत लाइन, एक पदेशम मुत्तुण विद्यादि पदेशानम तत्थ परिसेह करना दो। यानी उसमें क्या लिखा है, परमाणु के एक प्रदेश को छोड़कर मोत्तुण विद्यादि प्रदेशानम परिसेह, द्वितीयादि प्रदेश होने का निषेध किया है, नहीं होते ने होते इस बात का निषेध किया, बराबर है ना। नहीं होते का निषेध है, दो प्रदेश होते हैं ऐसा कहना पड़ेगा। ये नहीं शब्दवान निकालना चाहिए, यानी एक ही प्रदेश होता है। देखो आगे उसका स्पष्टीकरण, जिसमें द्वितीय आदि प्रदेश नहीं है वह अप्रदेश परमाणु है, यह उसकी व्युत्पत्ति है। यदि अप्रदेश पद का यह अर्थ न किया जाए तो जिस प्रकार गधे के सिंगों का असत्व है उसी प्रकार परमाणु के भी असत्व का प्रसंग आता है। क्योंकि जो द्रव्य है उसको अपना क्षेत्र होता ही है, उसके बाद कल करेंगे, समय हो गया। प्रदेश होते हैं इस बात का परिक्रमा में निषेध है, नहीं शब्द निकाल देना। हाँ कल आगे की बात करेंगे हम। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोका